नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिग्गज अमेरिकी पहलवान हलक होगन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले के बाद से कई प्रमुख लोगों ने बयान दिए हैं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार समर्थन करते हुए हल्क होगन ने उन्हें अपना हीरो बताया। WWE हॉल ऑफ फेम और हल्क मेनिया के नाम से मशहूर हल्क होगन ने अपने साथी JD वेंस के लिए जमकर प्रचार किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप गोली लगने की घटना के बाद एक बार फिर जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। उनके कान पर एक सफ़ेद पट्टी देखी जा सकती है। कई तस्वीरों में उनके समर्थकों ने भी कान पर पट्टी बांधी हुई है। हल्क होगन ने कहा कि अब सिर्फ ट्रंप ए मेनिया चलने वाला है। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस के लिए भी जमकर प्रचार किया। 70 साल के होगन, जिनका असली नाम टेरी बोलिया है, ने कहा, ट्रंप और उनके समर्थक अमेरिका को वापस सही रास्ते पर ले जाएंगे। गोली लगने के मामले के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर प्रचार में जुट गए हैं। उनकी पत्नी भी प्रचार में पूरा सहयोग कर रही हैं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह के जानलेवा हमले को याद करते हुए कहा कि हमले के दौरान उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ क्योंकि गॉड उनके साथ थे। आधिकारिक रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन स्वीकार होने के बाद ट्रंप ने बताया कि पेंसिल्वेनिया में उनकी रैली के दौरान हमला कैसे हुआ। उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में हूँ तो सिर्फ सर्वशक्तिवान ईश्वर की कृपा से खड़ा हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर मैंने आखिरी पल में अपना सिर नहीं हिलाया होता तो हत्यारे की गोलियाँ बिल्कुल निशाने पर लगती और मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं होता। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि 6 नागरिकों की मौत हो गई और 400 से अधिक घायल हो गए। अब खबर यह है कि शिक्षण संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश हाईकोर्ट द्वारा 5 जून को दिए गए आरक्षण की बहाली के फैसले के बाद शुरू हुआ था। दरअसल कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल कर दिया था, जिसे 2018 में छात्रों और शिक्षकों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद निरस्त कर दिया गया था। रविवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहकर आग में घी डालने का काम किया। रजाकार देशद्रोही के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता के तौर पर रखते हैं और ऐसे मौकों को दिलचस्पी से हासिल करने की कोशिश करते हैं। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक हर साल लगभग 4 लाख ग्रेजुएशन किए हुए छात्र लगभग 3,000 नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के मैदान में होते हैं। 2018 तक 56% सरकारी नौकरियां अलग अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित थी। सबसे ज़्यादा आरक्षण 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले परिवारों के सदस्यों को था। महिलाओं और अविकसित जिलों के लोगों को 10% आरक्षण था, जबकि आदिवासी समुदायों के सदस्यों को 5% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण था। इसके बाद ओपन एडमिशन के लिए सिर्फ 44% आरक्षण बचता था। इसमें सबसे ज़्यादा विवादित था स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिलने वाला आरक्षण। कई लोगों का मानना था कि PM शेख हसीना की पार्टी, जो बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम का नेतृत्व करती है, सिर्फ उन्हें फ़ायदा पहुँचाता है। इससे डिजर्व करने वाले उम्मीदवार भी बिना नौकरी के रह जाते थे और कई सीटें आरक्षित होने की वजह से खाली रह जाती थी। अप्रैल 2018 में छात्रों और शिक्षकों ने इन शर्तों को हटाने और कुल आरक्षण को घटाकर 10% करने की मांग को लेकर 4 महीने लंबा विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा भड़क उठी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद PM शेख हसीना ने सभी कोटा खत्म करने की घोषणा की थी। अब 5 जून 2024 को बांग्लादेश की अदालत ने सभी आरक्षणों, विशेष तौर पर विवादास्पद 30% स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे को निरस्त करने वाले 2018 के आदेश को पलटने का आदेश दिया। शुरुआत में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए और 7 जुलाई को बांग्लादेश बंद का ऐलान किया गया। लोग सड़कों पर आ गए और बहाली का विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने इस बार सभी ग्रेडों से भेदभावपूर्ण कोटा हटाने, संविधान में निर्धारित पिछड़ी आबादी के लिए कुल आरक्षण को 5% तक सीमित करने और इस बदलाव को तय करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित करने की मांग की है। सोमवार को प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारी और सत्ताधारी दल आमने सामने हो गए। कई छात्रों को गंभीर चोट आई और 6 की मौत भी हो गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।